ओम शांति। जिस प्रकार लौकिक संसार में माता पिता अपने बच्चों से बुलंदियों को छूने की आशा रखते हैं, उसी प्रकार अलौकिक पिता शिव बाबा भी अपने नूरे रतन बच्चों को अपने आशानुरूप एक्यूरेट वारिस बनाते हैं। ऐसे ही एक्यूरेट वारिस को 100% साकार करने वाली विदुषी मम्मा समान फॉलो फादर एवं बाबा की आशाओं की ज्योति पुंज हमारी परम श्रद्धेय एवं आदरणीय आशा दीदी जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। बाल्यकाल से ही आध्यात्म हर श्वास में परोसा गया। दीदी जी हमारे यज्ञ के कोहिनूर हैं। एजुकेशन लाइफ में भी आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं और आध्यात्मिक जगत में भी मील के पत्थर के आपने बहुत सारे काम किए हैं। कई कार्य आपके सराहनीय भी हैं। आप हमारे यज्ञ के अंतर्राष्ट्रीय वक्ता हैं, साथ में ओआरसी रिट्रीट सेंटर की आप निर्देशिका हैं, एडमिनिस्ट्रेशन विंग की आप चेयरपर्सन हैं। तो ऐसी आदरणीय दीदी जी से आज हम सुनेंगे पुण्य का खाता जमा करने की विधि। आदरणीय दीदी जी,
ओम शांति। ओम शांति। आज क्या बात है? नाश्ता नहीं किया? किया है? अच्छा, तो एक बार अच्छी तरह से बोलो जो दादी जानकी को सुनाई दे। ओम शांति। बहन ने परिचय देते हुए ये तो बताया ही नहीं कि इस आत्मा का भी अलौकिक जन्म यूपी में ही हुआ है। यूपी, वो भी कानपुर, और वो भी हमारी दादी जिसकी पालना में हम पले, वो गंगे दादी। और शायद आप लोगों को तो याद नहीं होगा, उस समय कानपुर में बहुत सारी दादियां थी। कानपुर में थी गंगे दादी, कानपुर में थी आतम मोहिनी दादी जो फिर बॉम्बे चले गए, कानपुर में थी सरला दादी जो फिर बैंगलोर में चले गए, कानपुर में थी शीतलमणि दादी जो पूना में चले गए, कानपुर में थी हमारी भोली दादी की जो बहन छोटी सती वो थी, वो फिर मधुबन आ गई, और कानपुर में थी हमारी दादी कुमारका की बहन सती दादी जो बाद में बॉम्बे में चले गए। कितनी दादियां थी, कितनी दादियां थी। इन सब दादियों की पालना और भी थी। बाल भवन में कानपुर में हक्की दादी भी थी जो कि दादी कुमारका की मदर थी, वो भी रहते थे। तो कानपुर ने तो बहुत पालना ली है। कानपुर के साथ साथ फिर आगे पूरा यूपी जिसका जन्म हुआ सबने बहुत पालना लिया। हमारी गुलजार दादी लखनऊ की, फाउंडर शांतामणि दादी लखनऊ में, कितनी बड़ी बड़ी दादियां मिली। एक बार प्यार से दिल से आज ये दादियां साकार रूप में नहीं है, लेकिन दिल से इन्होंने जो पालना की है उसका इजहार अच्छी तरह करतल ध्वनि से हम करेंगे। मम्मा और बाबा कितनी बार कानपुर में आए। मम्मा बाबा की पालना कितनी ली है कानपुर निवासी अपने ये लखनऊ निवासी कितनी पालना ली है, पूरे यूपी ने ली है। बीज को पालना मिलती है तो सारे वृक्ष को मिल जाती है। तो ऐसे स्थान के हम सब कौन है, कौन है बोलो, ऐसे स्थान के हम सब कौन है? उत्तर नहीं है भाई, यूपी की क्लास तो होशियार क्लास है। कौन है? वारिस, स्टूडेंट कहने से अपना दिल नहीं भरता, लेकिन जहां माता पिता की पालना मिली तो हम माता पिता के कौन हो गए? वारिस। तो सदा याद रखना हम हैं वारिस, माता पिता की पालना के वारिस हैं, अधिकारी बच्चे हैं। तो बाबा ने संगम युग पर जो हम बच्चों को अनेकानेक संस्कार दिए, उसमें एक ऐसा कौन सा संस्कार है जो लिया तो संगम पर, परंतु वो संस्कार हमारा आज दिन तक जिंदा है? बताओ, हम बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, कौन सा ऐसा संस्कार है जो आज दिन तक जिंदा है, चाहे हमारे में है, चाहे प्रकृति में है, चाहे वस्तुओं में, लेकिन वो संस्कार है, कौन सा? देने का एक्यूरेट आंसर है, देने का संस्कार। संगम पर प्यारे बाबा हम बच्चों को ये संस्कार देते हैं कि बच्चे तुमने देना है, देना रॉयल्टी है, लेना थोड़ा कम दर्जा है, लेकिन देना है। और अपने चारों ओर हम देखें, हर चीज दे रही है, कुर्सी दे रही है, लाइट दे रही है, पंखा दे रहा है, प्रकृति दे रही है, सब कोई दे रहे हैं। ये संस्कार बाबा ने इतना जबरदस्त हम बच्चों के अंदर डाला है, क्योंकि जब हम याद में बैठते हैं, चाहे हम उस कॉन्शियसनेस से बैठे या नहीं, परंतु जब हम याद में बैठते हैं तो भी हम दे रहे हैं। गुड वाइब्रेशंस, अच्छे वाइब्रेशंस चारों ओर दे रहे हैं। इसको भक्ति में कहा गया दान और पुण्य। अब दान क्या चीज है और पुण्य क्या चीज है, या दोनों एक हैं? हमेशा कहते भी दान पुण्य करो, कुछ दान पुण्य किया करो। छोटे बच्चे होते हैं उनके द्वारा भी दान पुण्य कराते हैं, बच्चों के अंदर संस्कार डालो। तो दान क्या है और पुण्य क्या है, दोनों में अंतर है या एक ही है? अंतर है, क्या अंतर है? चलो मैं सुना देती हूं। ये नोट करना, दान उसको कहते हैं जो मेरे पास है और वो मैं देती हूं। मेरे पास अनाज है तो मैं अनाज देती हूं, मेरे पास पानी है मैं पानी देती हूं, मेरे पास धन है मैं धन दे रही हूं। जो मेरे पास है और वो मैं देती हूं उसको कहा जाता है दान। और जो मुझे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, जो बाबा हम बच्चों का ध्यान खिंचाता है, पुण्य उसको कहते हैं जिसकी जरूरत सामने वाले को है और आप वह देते हैं। अंतर पड़ा? दान जो आपके पास है आप दे रहे हैं, आपकी चॉइस है। पुण्य उसको कहते हैं जिसकी जरूरत सामने वाले को है और हम वह देते हैं। उदाहरण के रूप से बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं कि बच्चे अगर सामने वाले को पानी की प्यास है, पानी चाहता है और आप उसको बढ़िया से बढ़िया 56 प्रकार के व्यंजन दो, संतुष्ट होगा? उसके लिए दिया न दिया समान है, उसके काम का नहीं है, उसको जरूरत नहीं है। परंतु उसको पानी की जरूरत है और मैं उसको पानी ही देती हूं और वो आत्मा संतुष्ट होती है, अंदर में उसको महसूस होता है कि मेरी जो चाहना थी, इच्छा थी, वो पूरी हुई, कंटेंटमेंट होती है, उसको कहते हैं पुण्य। जिसको जो चाहिए वो उसको देना, उसको कहा जाता है पुण्य। अब ये हम बच्चे जानते हैं, बाबा ने एक नहीं अनेक बार समझाया है कि दान और पुण्य भी हमको सीमा में रह करके करना है, मर्यादा में रह के करना है। चाहे हमारा तन है, मन है, धन है, हर चीज के देने की मर्यादा है, कहां देना है, किसको देना है, कितनी मात्रा में देना है, ये सब बाबा ने समझाया हुआ है। बाबा की मुरलियों में ये आता है। जब हम कहते हैं मर्यादा, तो मर्यादा केवल यही नहीं है कि भाई क्लास करना, मुरली पढ़ना आदि नहीं, मर्यादा इन चीजों की भी बाबा ने बताई है। व्यवहारिक मर्यादाएं क्या है वो भी बाबा ने हम बच्चों को बताई। आज मैं उस विषय पर नहीं जाती हूं, आज केवल पुण्य कर्म उसके ऊपर ही विवेचन करेंगे। अब पुण्य आत्मा किसे कहेंगे? बाय चांस बाबा की एक मुरली मेरे हाथ में आई और वो पुण्य आत्माओं पर ही थी, तो मैंने समझा कि ये चीज बाबा ने हम सबके लिए अंडरलाइन करने के लिए दी है, टॉपिक भी यही मिला। तो पुण्य आत्मा हम किसे कहें? दुनिया के हिसाब से आप छोड़ दीजिए, बाबा की परिभाषा के अनुसार पुण्य आत्मा हम किसे कहेंगे? बाबा ने उसमें 10 बातें बताई, नोट करिएगा, 10 बातें हैं। पहली बात बाबा ने कहा कि जो पुण्य आत्मा होता है उसकी एक विशेषता होती है, वो हर सेकंड, हर संकल्प अपने प्रति व दूसरों के प्रति पुण्य जमा करने वाले होते हैं। उनका पुण्य का खाता जमा होता जाता है। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि बच्चों को पुण्य ब्राह्मण आत्माओं के साथ करने चाहिए। वो कैसे? जिसमें बाबा ने कहा, मानो कोई नीरस है, बिल्कुल डिप्रेशन में है, अपनी जीवन रूपी नौका की पतवार छोड़ चुका है, ठीक है जिधर चल जाएगी उधर चली जाए, बागडोर हाथ से छोड़ दिए, तो ऐसी आत्मा का जीवन कैसा हो गया? डामाडोल, ना उम्मीद। तो बाबा ने कहा कि जब हम आत्माओं को, ऐसी आत्माओं को अपने ज्ञान और योग बल के आधार से, अपने व्यवहार के आधार से उनके जीवन में पुनः रस लाते हैं, नीरसता से उन्हें एक रस बनाते हैं, ना उम्मीदवार से उम्मीदवार बनाते हैं। अब किसी में मानो उमंग उत्साह बिल्कुल नहीं है, जो आजकल के हमारे पुराने भाई बहनों के मुख से कभी कभी निकल भी आता है, क्या कहते हैं, बहन जी हमने बहुत देख लिया, हमने बहुत कर लिया, अब नयों की बारी है, पुराने बोलते हैं, या थोड़ी बड़ी आयु हो जाती है तो बोलते हैं, बहन जी हम लोगों ने तो बहुत सारी उम्र किया है, अब इनको करने दो। कौन सी मुरली है बाबा की जिसमें बाबा ने आकर के कहा कि आज से ये पुरानों के लिए और बुजुर्गों के लिए मुरली नहीं है? है कोई ऐसी मुरली? वो तो बता दो, मैं ढूंढूंगी। है? तो हम आत्माएं कैसे कहती हैं कि अब ये उनके लिए हमारे लिए नहीं है? ये मैं अपने आप को, बाबा ने एक बार कहा था, अब मैं आपको उस डेंजरस पॉइंट की याद दिलाना चाहती हूं जो बाबा ने हम बच्चों को कहा, उससे सावधान रहो। ये बोल हमारे क्यों निकलते हैं, उसका कारण है। बाबा ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि देखो द्वापर युग के राजाओं ने अपनी राजाई कैसे गंवाई। दो कारण थे, एक था अलबेलापन और दूसरा था ऐश और आराम। समझ आई बात? अलबेलापन और दूसरा ऐश और आराम। जब हम अलबेले हो जाते हैं कि वो कर लेंगे, हमने बहुत कर लिया, बहुत हो गया। तब बाबा कहता है ऐसी आत्माएं पुण्य क्षीण हो जाती हैं। पुण्य आत्मा की बजाय पुण्य क्षीण आए हुए भाग्य को भी स्वीकार नहीं कर पाती, आए हुए भाग्य से भी लाभ नहीं ले पाती। तब बाबा हम बच्चों को कहता है अलबेलापन इसको कदापि अपने करीब नहीं आने दो। आप सब जानते इतिहास भरा पड़ा है, जो राजाएं कहते थे कोई बात नहीं, अरे शत्रु यहां तक आ गया, यहां तक आ गया, यहां तक आ गया, तो भी कहते थे कोई बात नहीं, तो मारे गए ना, रावण ऐसे ही तो मारा गया ना। दूसरा बाबा ने कहा था ऐश और आराम। जब बच्चे ये भूल जाते हैं कि हम वनवाह में हैं, वनवास नहीं वनवाह, वनवाह सिंधी शब्द है जिसका अर्थ ये होता है कि जब देखिए कन्या की शादी होती है तो उसे एक दिन पूर्व वो मलते हैं ना, उसको कुछ उपटन वगैरह मलते हैं, तेल वेल लगाते हैं, सही ये सब लगाते हैं, नहाती धोती नहीं है, ऐसे ही रहती है, उसको कहते वनवाह, यानी फैशन नहीं कर सकते, वो नहीं हो सकते, सिंपल सिंपल कपड़े, सिंपल वो शादी वाले दिन बेशक अच्छे कपड़े पहनो लेकिन शादी से पहले बिल्कुल सिंपल कपड़े होते हैं। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि तुम वनवाह में हो। वनवाह केवल वस्त्रों से संबंधित नहीं है, वनवाह हमारी सर्व कर्मेंद्रियों के सुख से संबंधित है, चाहे वो नैनों का सुख है, चाहे कानों का सुख है, चाहे जुबान का सुख है, चाहे स्पर्श का सुख है, हर प्रकार का सुख वो हम बच्चों को संगम युग पर नहीं लेना है। ऐश और आराम ये संगम की चीजें नहीं है। इस समय बच्चे तुम वनवाह में, जब तुम सतयुग में जाओगे तो तुम्हें सब प्रकार के सुख हैं लेकिन संगम पर नहीं। जब हम बच्चों की मनसा वृत्ति ऐश और आराम में चली जाती है हम पुण्य क्षीण हो जाते हैं, फिर हम पुण्य नहीं कर सकते, क्योंकि दान और पुण्य दूसरों से संबंधित है, अपने से नहीं है। तो दूसरों का पुण्य हम कर ही नहीं सकेंगे तो पुण्य क्षीण आत्माएं हो गई ना। तब बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बच्चे तुम्हारा हर सेकंड हर संकल्प स्वयं के प्रति व औरों के प्रति पुण्य का खाता जमा करने वाला हो, उसे कहेंगे पुण्य आत्मा। जैसे आप अच्छा स्पीकर किसे कहोगे, कोई एक स्पीच से आप उसको अच्छा स्पीकर नहीं कहते, जब बहुत स्पीचेस वो देता है और सब स्पीचेस उसकी अच्छी होती है तब कहते हो फलाना जो है ना बड़ा अच्छा स्पीकर है, फलाना जो है ना बड़ा अच्छा इनकम टैक्स का है, फलाना जो बड़ा अच्छा वकील है, फलाना बड़ा अच्छा डॉक्टर है। अभ्यास से बहुकाल के किए हुए कर्मों के आधार से उनको वो टाइटल मिलता है, ऐसे पुण्य आत्मा का टाइटल कोई एक आधा पुण्य करने से नहीं मिलता है। पुण्य आत्मा अर्थात हर संकल्प हर सेकंड पुण्य कमाने वाली। क्लियर हो रही है बात? क्लियर हो रही है ना? पीछे माताएं सुन रहे हो ना? हाँ, पीछे और पीछे सुन रहे हो ना? अच्छी तरह क्लियर हो रहा है ना? तो हर सेकंड हर संकल्प हमारा इस रीति से चलना चाहिए। जैसे फॉर इंस्टेंस आप कहेंगे एग्जाम्पल, आपके सामने दादी जानकी है, आपके सामने दादी गुलजार है, आपके सामने दादी रतन मोहिनी है। आप किसी भी दादी के सामने जाओ, आप प्राप्ति का अनुभव करते हो या नहीं करते हो? बोलो। करते हैं ना? ये स्वरूप अब हमारा भी तो होना चाहिए ना। दादियों की एक दृष्टि, दादियों का एक बोल। दादी जानकी बाबा 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 कहती और कहलवाती है, कुछ नहीं। बाबा 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 हम सबका ध्यान कहां ले जाती है? कितना हम सीखते हैं वो आधा घंटा जो 7:30 से 8 बजे तक कराती है, कितना सीखने को मिलता है? ये पुण्य का खाता दादी के अकाउंट में जमा होता है, जो इतना आत्माओं को प्राप्ति का अनुभव होता है, ये है पुण्य। ठीक है? दूसरी बात बाबा ने कही थी कि पुण्य आत्मा जो होगी ना कोई खजाना महादान के रूप में देती रहेगी। अब हमारे पास खजाने कितने हैं? कितने खजाने? ज्ञान रत्नों का है, गुणों का है, शक्तियों का है, खुशियों का है, कितने खजाने? देते जाओ, कोई हिम्मतहीन है उसको हिम्मत दो, कोई उदास है उसको हंसाओ। प्यारे बाबा साकार रूप में गुलजार दादी सुनाया करते थे, अगर कोई आत्मा ऐसे उदास होती थी तो बाबा बुलाते थे, बच्चे इधर आओ, क्या हुआ है? अब कोई मूड अपसेट होगी ना उसकी, कोई ना कोई कारण बना होगा जिससे मूड अपसेट होगी, तो कही बाबा ऐसे ऐसे। जब तक वो बच्ची मुस्कुराती नहीं थी तब तक बाबा उसको छोड़ता नहीं था, हंसाएगा, उसका मूड ठीक करेगा, पीतेगा। रोते हुए आते थे, हंसते हुए जाते थे। अब जरा हम अपनी चेकिंग कर लिए, हमारे पास भी जो लोग आते हैं ऐसे हंसते हुए जाते हैं या हम उनको रुला के भेजते हैं? तुम तो है ही ऐसे, तुम्हारे साथ होना ही ये चाहिए। सोचो। तो पुण्य आत्मा अर्थात कोई भी खजाने का महादान करके पुण्य कमाने वाली होगी। कितने भाई बहन ये करते हैं ईमानदारी से बताना, देखो कितने थोड़े से हाथ हैं। इस सीजन से आचरण है ना बाबा का, संकल्प लो कि मेरे पास कोई भी आए मैं उसको हंसाते हुए भेजू, कोई ना कोई ज्ञान रतन से उसके मूड को ठीक कर दू, कोई ना कोई ज्ञान रतन से उसको हिम्मत दे दू, खुशी दे दू, ताकि वो अपने नेचुरल ओरिजिनल रूप में आ जाए। ठीक है? तीसरी बात, बाबा ने कहा कि पुण्य आत्मा जो होगी उसके नैनों से, उसके स्वभाव से बाप दादा की सूरत और सीरत दिखाई दे। सूरत और सीरत कैसे दिखेगी? बाबा की सूरत तो बाबा जैसी है, लेकिन हमारे फीचर्स में, सूरत में बाबा की वो रूहानियत ऐसी भर जाए और सीरत में ऐसे गुण और शक्तियां भर जाएं जो कि औरों को बाप दादा की सूरत और सीरत मुझ आत्मा से दिखाई दे। ये पुण्य आत्मा अनेकों को प्रेरणा देने वाली, अनेकों को प्रेरणा देने वाली। आपने देखा है ना, दादी निकलते हैं, गुलजार दादी निकलते हैं तो सब कैसे धक्का मुक्की करके क्या पाते, एक झलक पाना चाहते हैं। क्यों, क्या चीज खींचती है? वो रूहानी, जो रूहानियत है उसमें, वो हमको खींचती है। यही चीज है ना। ये कैसे पाई दादियों ने? बार 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 अशरीरीपन का अभ्यास, बार 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 रूहानियत, साइलेंस। तो सूरत और सीरत बाप दादा समान, स्मृति में सदा समर्थी हो, शक्ति हो, कमजोर स्मृति नहीं, पास्ट की और व्यर्थ की स्मृति नहीं, पावर खत्म तब होती है जब हम बीती हुई बातें और व्यर्थ बातें उनका चिंतन करते हैं, तब बाबा कहता है अपनी स्मृति बहुत शक्तिशाली बन। तब तो आप पुण्य कर सकेंगे ना, औरों को पुण्य कर्म करने योग्य बनाना कोई कम बात है क्या? आपको देखकर दूसरे भी पुण्य कर्म करना शुरू कर दें, ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। और इस इंस्पिरेशन के लिए हमें बहुत अंदरूनी रूप से अपनी स्मृति को पावरफुल रखना, ठीक है? ठीक है बहनों, ठीक। तीसरी बात बाबा ने कही थी कि आपके चलन से कल्याणकारी वृत्ति और बाप के चरित्र दिखाई दे। पुण्यात्मा बाप के चरित्र, मिसाल के तौर पर साधारण कर्म भी आप कर रहे हैं ना, उसमें इतना न्यारापन, अलौकिकता, अनासक्त वृत्ति हो जो आपको लगे आप हैं भी और नहीं भी हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा कुछ भी करते थे लगता था अभी है, लगता था अभी नहीं है। तो बाप समान चरित्र हो और कल्याणकारी वृत्ति हो, ये दो चीज हमारी चलन से प्रदर्शित होनी चाहिए, तब हम पुण्य आत्मा कहलाएंगे। इसके साथ साथ बाबा कहते हैं एक और काम जो आप बच्चे ही कर सकते हो, वो है बाबा है दुख हरता सुख करता। सारी दुनिया में कौन सी आत्माएं हैं, कैसी आत्माएं हैं? दुखी अशांत। तो बाबा ने कहा पुण्य आत्मा वो कहलाएगा जो कि अपने संकल्पों से औरों के दुख हरने वाला होगा। इसके लिए बहुत रहम दिली चाहिए, कंपैशनेट हार्ट चाहिए। अगले के दुख को दूर करना कम बात थोड़ी है, तो रहम दिल बनना होगा। जितने रहम दिल होंगे उतने दुख हरता होंगे। रहम ही नहीं होगा तो दुख हरता कैसे बनेंगे, नहीं बन सकते। फिर बाबा ने एक बात कही थी, कि गरीब आत्माओं को, कोई धन के गरीब नहीं, ज्ञान की गरीबी। ज्ञान की गरीबी क्या है? बुरा नहीं मानना, ज्ञान की गरीबी है। हाँ हाँ मैं सब जानती हूं, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ज्ञान है लेकिन ज्ञान यूज करने की ताकत नहीं है, उसको कहते गरीब। ज्ञान है, अंबार है, बढ़िया से बढ़िया क्लास, बढ़िया से बढ़िया भाषण हो सकता है, बढ़िया से बढ़िया दूसरों को सुनाया जा सकता है, परंतु स्वयं के लिए वो नहीं है। ज्ञान की गरीबी है, उसको प्रैक्टिकल में नहीं ला सकते। कहानी है ना माताओं की और पंडित जी की। माताओं ने इनवाइट किया पंडित जी को, पंडित जी आइए आज मेरे, आज हमारे गांव में भोजन करने, याद है ना राम नाम की नौका? नहीं यार, याद है ना? रोज बिचारी नदी पार करके आती थी कथा सुनने के लिए, और आज निमंत्रण दिया पंडित जी को, पंडित जी आइए हमारे गांव में भोजन स्वीकार करिए। जब नदी किनारे पहुंचे तो पंडित जी बोले नौका कहाँ है? बोले पंडित जी नौका कैसी, आपने ही तो सिखाया राम नाम की नौका, हम रोज राम नाम की नौका में आते और जाते, आप भी चलिए राम नाम की नौका में। अब वो पंडित जी में ताकत नहीं, तो उसको गरीब कहें साहूकार कहें? बोलो। तो हमारी जो साहूकारी है वो ज्ञान रत्नों की धारणा है। जब ज्ञान रत्न धारणा में होंगे तब तो दिखेंगे ना, और जब दिखेंगे तब तो कोई उनको प्रैक्टिकल मिलाएगा ना। नहीं तो क्या कहेंगे, बहन जी सुना तो बहुत अच्छा रही थी, जब उनके ऊपर आन पड़ी तो सारी याद आ गई बातें, बोलते हैं ना। इसलिए अपनी साहूकारी का अंदाज लगाइए। बाबा ने हमें साहूकार बनाया गरीब बनाया? बाबा कहते पहले बिल्कुल गरीब बन जाओ, कुछ भी मेरा नहीं है, उसके बाद फिर साहूकार, ज्ञान रत्नों की साहूकारी। ठीक बात है, ये हमको चेक करना। जब साहूकार होंगे तब तो औरों को दे सकेंगे, जब साहूकार मैं स्वयं नहीं हूं तो मैं औरों को क्या दे सकती हूं। इसलिए मुझे साहूकार बनना होगा। फिर बाबा ने एक बात उसमें कही थी मुरली में, कि बच्चे आपको रूहानी चुंबक के समान होना है। जैसे चुंबक होती है तो वो खींचती है ना, ऐसे आपको भी चुंबक बनना है, रूहानी चुंबक। अब रूहानी चुंबक बनने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? आप और बाप, चुंबक में दो चीज होती है, एक पत्ती होती है और दूसरी चुंबक होती है। पत्ती को जब चुंबक पर रगड़ते हैं और एक ही लेवल से रगड़ते हैं, एक ही साइड से रगड़ते हैं, तब उसमें चुंबकीय आकर्षण पैदा होता है, तब वो लोहे को खींच सकती है। अगर आप चुंबक के ऊपर लोहे की पत्ती को उल्टा सीधा जैसे तैसे करो तो वो चुंबक नहीं बनता। एक ही, ऐसे बाबा ने कहा कि बच्चे बाप समान चुंबक बनने के लिए आप और बाप, ये दो मंत्र याद रखो। और जब आप रूहानी चुंबक होंगे तो आपके चेहरे से बाबा का साक्षात्कार हो सकता है। कई बार आप लोग सुनाते हैं ना, कहते हैं हमको दादी दिखाई नहीं दे रही थी, हमको दादी दिखाई नहीं दे रही थी, बाबा दिखाई दे रहा था। कई बार आप लोग अनुभव सुनाते हैं ना, वो कैसे हुआ? अगर दादियों से हो सकता है तो हम भी तो बाबा के सच्चे ब्राह्मण बच्चे हैं। सच्चे ब्राह्मण बच्चे हैं ना, हमसे नहीं दिखेगा, हमसे भी दिख सकता है। सो पुण्य आत्मा अर्थात रूहानी चुंबकीय आकर्षण, लाइट हाउस। लाइट हाउस का काम क्या है? लाइट हाउस का काम क्या है? अंधकार में रोशनी देना। जो जहाज भटका हुआ होता है सागर में, उसको राह दिखाना, यही काम होता है ना। तो हम अपने आप से पूछें, हम भी बाबा के बच्चे, पुण्य आत्मा, लाइट हाउस हैं, क्या हमसे औरों की भटकन दूर होती है? पूछो। हमारी व्यवहार से, विहार से, चरित्र से, चाल चलन से औरों की भटकन दूर होती है? या कह देते हैं ये भी तो ऐसा करते हैं, तो मैंने क्या कर लिया, पुण्य के बजाय दूसरा खाता खोल दिया ना। एक बार अव्यक्त रूप में बाबा आए हुए थे, सब बच्चे ऐसे, बाबा छुट्टी ले रहे थे, विदाई ले रहे थे, सब ऐसे सामने बैठे थे। बाबा जाते जाते वापस आए, सब महारथी, सब बड़े बड़े बैठे थे, तो बाबा ने सारी सभा को क्या कहा, आप लोगों का एक काम, क्या काम है, लाइन सीधी रखना। लाइन सीधी रखना समझा, इसका अर्थ क्या है, जैसे बैठे हैं मेरे पीछे दूसरा भी वैसे, तीसरा भी वैसे, चौथा भी, अगर मैं थोड़ी दाएं हो जाऊंगी तो सारी लाइन कैसी हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी ना। हम सब ब्राह्मणों का काम है लाइन सीधी रखना, लाइट हाउस बनना। ओके, कोई बहुत क्रोध की अग्नि में हो, ईर्ष्या की अग्नि में हो, जल रहा हो, उसकी तपत बुझाना ये पुण्य आत्मा का काम है। आती तो है ना ऐसी आत्माएं, सम्मुख आती तो है ना, आप उसको उस समय कहो चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप होगी और ही उल्टा बोलेगी, क्यों चुप हो जाऊं, और ही बोलेगी, आग लगेगी। पुण्य आत्मा के नाते शीतला स्वरूप अपना धारण और शीतलता का दान। गुलजार दादी, हम लोग संगठन में रहते थे ना दिल्ली में पांडव भवन में, तो दादी हमारे इंचार्ज थे, तो दादी हम लोगों को एक बात सिखाती थी, मानो हम लोग 6-8 कन्याएं बैठी हैं आपस में बात कर रही हैं, किसी की बात है और दादी कहते थे आपने कुछ बोला नहीं लेकिन सिर्फ ऐसे किया ना, केवल सिर हिलाया ना, इसमें भी तुम्हारे नंबर कट जाते हैं। सिर से हामी तो भर दी ना, तुम्हारे नंबर कट जाते हैं। तुमने आग में तेल डाल दिया, सिर क्यों हिलाया, साक्षी होके देख सकते थे ना, शांत होके देख सकते हैं ना, सुन सकते हैं ना, सिर हिलाना माना बात को टेका देना। दादी इतनी सूक्ष्म हम लोगों की चेकिंग कराते, बोलना तो दूर, वर्णन करना दूर, केवल आंख का इशारा या सिर का हिलना वो भी पर्याप्त है, तो ये भी नहीं करना। आप अगर एकदम शांत होकर के बैठते हैं, न्यूट्रल होके बैठते हैं, अगली आत्मा की ताकत नहीं होगी। वो सोचेगी ये एकदम शांत, जरूर कोई बात है। हमारा काम आग बुझाना है, आग लगाना नहीं। लगी हुई आग को पंखा नहीं देना है, लगी हुई आग को भी बुझाना, ये पुण्य आत्मा। ठीक है, इसी रीति से प्यारे बाबा कहते हैं कि कितनी भी परतंत्र आत्माओं, पुण्य संकल्प शस्त्र के सदृश है। कितनी भी आत्मा परतंत्र हो, अब परतंत्रता कई प्रकार की होती है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी, परतंत्र माना बंधन वाली, पुण्य आत्मा औरों के बंधन तोड़ने वाली होगी, उसके संकल्प में शक्ति होगी। कई बार आप लोगों को भाई बहन मिलते हैं ना, कहते हैं आपने हमको ये बात बताई, उसके बाद से हमारे सारे बंधन टूट गए। कई बार भाई बहने मिलते हैं, कहते हैं ना दीदी आपने ये बात बताई, उसमें हमारे सारे बंधन टूट गए। अब बंधन कोई आत्मा ने नहीं तोड़े, लेकिन आपने अपनी ओर से उस आत्मा को इतना सशक्त किया जो उन बंधनों को तोड़ सकती थी। ये है पुण्य आत्मा। फिर बाबा कहते हैं असंभव को संभव करना। रेगिस्तान में हरियाली करना कौन करेगा? कोई दूसरे तो बाबा को बच्चे नहीं है, हम ही बच्चे हैं। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ठीक है, तो सार ये है, हमें अपने संकल्पों को बहुत बहुत अटेंशन से देखना और चेक करना, और उन संकल्पों को सेवा में लगाना है, तब वो पुण्य बनेगा। संकल्प मैंने किए और अपने पास ही रखे हैं तो पुण्य का खाता नहीं बनाते। पुण्य का खाता तब बनता है जब हम उसको सेवा में, जिससे किसी का लाभ। और इसमें हमें अटेंशन रखना है अलबेलापन और ऐश और आराम। आज की मुरली थी या कल की, जिसमें बाबा ने कहा कि जो सेवा करने वाले बच्चे हैं वो आराम नहीं करते, सर्विसेबल बच्चे आराम नहीं करते। आराम माना थक के बैठ जाना, हमने बहुत कर लिया, बहुत हो गया, ठीक है। अब मैं आपको 5 मिनट का समय देती हूं, उन 5 मिनटों में आपने ये चेक करना है कि इस मापदंड के आधार से मैं कितना परसेंटेज पुण्य आत्मा बनी हूं। निकाल सकेंगे जो मापदंड मिला उस आधार से मैं कितनी पुण्य आत्मा बनी हूं। ठीक है, चलो बाबा की याद में बैठते हैं और उसमें ये चेकिंग अपनी करेंगे। ओम शांति।